अरबी जो है वो हम क्यों सीखें?
देखिए, अरबी सीखने की अहमियत एक और चीज है,
ठीक है,
उसका जरूरी होना दूसरी चीज है,
ठीक है,
ठीक है। अरबी सीखना जरूरी नहीं है,
ठीक,
ये आप ध्यान नहीं रखिए, क्योंकि बाद वक्त क्या होता है, एक जुमले का मतलब लोग कुछ समझ लेते हैं और पता चलते हैं कि यार अच्छा जी अरबी सीखना वाजिब था तो हमने तो सीखी नहीं, ऐसा नहीं।
ठीक है,
अरबी जबान का सीखना उम्मत की एक तादाद के लिए तो लाजिम है,
ठीक है,
ठीक है, ताकि उलूमे दीनिया उलूमे कुरान जो है वो जिंदा रहे, उनको बका रहे। लेकिन हर हर उम्मती हर हर मुसलमान को सीखना जरूरी हो ऐसी बात नहीं है,
ठीक
है, पहले तो ये बात। लेकिन ये है कि सीखना चाहिए या नहीं, एक पसंदीदा अमल है तो ये यकीनन पसंदीदा अमल है। क्यों पसंदीदा अमल है, उसमें कई वजूहत हो सकती है। मुसलमान के लिए तो अरबी सीखना यूं भी पसंदीदा है कि उनके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जबान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान होने की वजह से हमें अरबी से प्यार है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत ताल्लुक रखने वाली हर शय से मोहब्बत करना ये मुसलमान का ईमान है। इसीलिए मदीने से मोहब्बत करते हैं, मदीने की गलियों से मोहब्बत करते हैं, मदीनों के जर्रा से मोहब्बत करते हैं, मदीने की जनाब दरख्तों से पत्थरों से मोहब्बत करते हैं। तो अरबी जबान तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो जबान है जो सारी जिंदगी आपने जिसमें कलाम फरमाया, जिसके अंदर आपकी अहादीस तय, जिसके अंदर खुदा का कुरान उतरा। तो हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जबान की वजह से भी अरबी से प्यार है, हमें कुरान की जबान होने की वजह से भी अरबी से प्यार है। और जब एक चीज से प्यार होता है तो आदमी उसको इख्तियार करने की, उसे लेने की कोशिश करता है, लिहाजा इस एतबार से भी अरबी सीखनी चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान मजीद हुदल लिन्नास है, हुदल लिल्मुत्तकीन, ये लोगों के लिए हिदायत है, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब इसकी जो हिदायत है वो सिर्फ अरबी अल्फाज बगैर समझ के पढ़ने से नहीं मिलती,
ठीक है,
क्योंकि हिदायत का मतलब तो ये है ना कि आपकी रहनुमाई की जा रही है, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको कुछ चीजें समझाई जा रही है। लेकिन अगर आप एक जबान पढ़ रहे और आपको उसके किसी लफ्ज का मतलब ही नहीं आता,
ठीक है,
तो आपको उसे रहनुमाई तो ना मिली। तो ये जो कुरान पाक का वस्फ हिदायत है उसके हुसूल का तरीका ये है कि आपको अरबी जबान आती हो। हाँ, फी जमाना इसमें एक ये एडवांटेज है कि उर्दू तराजिम मौजूद है, तफासीर मौजूद है, लिहाजा ये मकसद आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो किसी कलाम की ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उसका मकाम व मर्तबा बहरहाल डिफरेंट होता है, ठीक है। दुनिया की किसी जबान का एक मास्टरपीस होता है, हम अपनी जबान में पढ़ते तो हम कहते हैं यार ये क्या है, लेकिन जब उस जबान का फहम हासिल करके पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मकाम व मर्तबा क्या है। कुरान मजीद का मामला भी ऐसे ही है। दूसरी बात यह कि हमें नमाज खुशबू खुजू से पढ़ने का कहा गया, ठीक, नमाज तो उर्दू में नहीं पढ़ सकते, कुरान मजीद का तर्जुमा तो आप उर्दू में पढ़ सकते, नमाज तो उर्दू में नहीं पढ़ेंगे, वो अरबी में पढ़ेंगे। नमाज खुशबू खुजू से पढ़ने का हुक्म है, ये कुरान मजीद में मौजूद है, अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिऊन, ये आयत मुबारक खुशबू खुजू के बारे में। खुशबू खुजू कैसे मिलता है, नमाज में तवज्जो, नमाज में इन्हिमाक कैसे मिलता है? उसका बहुत आसान तरीका यह है कि जो कुछ आप नमाज में पढ़ रहे हैं उसका मतलब आपको समझ आ रहा
हो, बहुत खूब,
क्योंकि जब आपकी तवज्जो उसके मतलब की तरफ होगी, उसके माना की तरफ होगी, तो फिर आपकी तवज्जो किसी और तरफ नहीं होगी। इसी को खुशबू खुजू कहते हैं कि नमाज पढ़ रहे तो तवज्जो भी नमाज में ही हो, बाजार में ना हो, कारोबार में ना हो। तो अब नमाज में जो कुछ हमने पढ़ना है वो अरबी जबान में पढ़ना है, और अरबी जबान के अंदर हम पढ़ेंगे, समझ हमें तब आएगी कि जब हमें वो अरबी अल्फाज समझ आ रहे होंगे। लिहाजा एटलीस्ट इतनी अरबी या अरबी का इतना तर्जमा जहन नशीन हो कि जिसके जरिए हमारी नमाज के अंदर जो तवज्जो और खुशू खुजू हमें चाहिए वो हमें हासिल हो सके। तो ये एक इसकी इफादियत का एक सबब ये भी है। अच्छा, दूसरा, ये तो चले सिर्फ इतना सा हिस्सा होगा जितना हम कुरान मजीद पढ़ें, जितना हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन कुरान मजीद अगर आप पूरा पढ़ें और पूरा ही समझ आ रहा हो आपको,
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह,
तो बताइए जो इसकी अहमियत और जो इसकी अजमत और जो इसके फवायदे हैं वो किस कदर हैं।
जी,
जो कुरान मजीद समझ के पढ़ता है ना, कभी आप उससे पूछें कि उसको कुरान पढ़ने में कितना मजा आता है, और जो बगैर समझे पढ़ता है उससे पूछे इसको कितना मजा आता है। अगर उसकी कुव्वत ईमानी बहुत मजबूत है, قرآن سے محبت بہت ہے اس کی، اب تو اس کو مزہ آئے گا، ورنہ جس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کو لطف ہی کچھ اور آتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر، کروڑا کروڑ احسان ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے عربی آتی ہے، میں عربی سنوں تو مجھے سمجھ آتی ہے، میں پڑھوں تو مجھے سمجھ آتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ قرات کرتا ہے تو ہمیں وہ پورے الفاظ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، اس کا معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس سے جو ہمارے اندر ایک مزے کی کیفیت اور ایک لطف قرآن مجید سے اور ایک احساس ہمیں ملتا ہے، وہ شاید عام آدمی کو نہیں ملتا کہ جس کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا جو ہے یہ تو بہرحال عربی پر موقوف ہے کہ آپ عربی الفاظ پڑھتے جا رہے اور آپ کو پورا پورا سمجھ آتا جا رہا۔ اچھا پھر سمجھ کے پڑھنا، بغیر سمجھے بغیر سمجھے پڑھنا بھی فضیلت سے خالی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو بڑی وعدے سی بات ہے۔ ہمیں فرمایا گیا کہ الف لام میم پہ 30 نیکی ہیں، الف پہ 10، لام پہ 10 اور میم پہ 10، اور الف لام میم کا معنی ہمیں پتا نہیں، پھر بھی 10 نیکی، پھر بھی 30 نیکی ہیں۔ تو قرآن مجید کے ہر حرف پہ 10 نیکی ہیں اگرچہ نہ بھی سمجھ آئے، لہذا بغیر سمجھے پڑھنا بھی فضیلت ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن سمجھ کے پڑھنے کی فضیلت پہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا بغیر سمجھے پوری سورہ بقرہ پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ڈھائی پارے ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی اسے، دوسری طرف ایک آدمی صرف ایک آیت پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سمجھ آ رہی ہے، اس کا ایک آیت پڑھنا اس کے پوری سورہ بقرہ پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک جو اہمیت اور جو ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے وہ عربی زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔